नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।